मेरा नाम उम्मिया है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रही हूँ काफी अरसे से, और उससे पहले मैं यहीं पे पढ़ी थी। और मेरा जो काम है वो है, मैं प्रोग्राम मैनेज कर रही हूँ जिसका नाम है फेयरवे UWA।
आपने डॉक्टरेट की है एजुकेशनल साइकोलॉजी में
जी
और आप वाबस्ता हैं फेयरवे नामी प्रोग्राम के। इस प्रोग्राम के बारे में हमारे सामने उनको बताइए कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है।
फेयरवे UWA फेडरल फंडेड है, प्रोग्राम गवर्नमेंट फंडेड है और बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट्स की सपोर्ट करते हैं और उनको तैयार करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। ईयर 11 से शुरू करते हैं, ईयर 11 में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सिर्फ 130 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं अक्रॉस द स्टेट, सारे WA में से, रीजनल, रिमोट और पर्थ से ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उसमें, और उनको हम एकेडमिकली सपोर्ट करते हैं, रिवीजन कोर्सेज, इंग्लिश, मैथ्स ईयर 12 में, और फिर वो स्टूडेंट्स जो UWA आ जाते हैं उनको हम स्टडी ग्रुप्स और करियर वर्कशॉप्स और डी स्ट्रेस और इस तरह की वर्कशॉप्स कराते हैं थ्रू आउट देयर स्टडीज, ताकि वो अपने यूनिट्स में अच्छा करें, अच्छा अचीव करें, और फिर करियर वर्कशॉप्स और उस इंफॉर्मेशन से फायदा होता है कि दे नो वेयर टू गो, देयर CVs आर रेडी, दे गेट रेफरेंसेस और दे गेट दिस, दे हैव अ होलिस्टिक यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस। मतलब मेन चीज ये है कि उनका यूनिवर्सिटी आने से पहले वो तैयार हों और जब वो यहाँ आए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये जिन्हें हम कहते हैं डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से हैं, जिसमें 70% हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, जिसका मतलब है उसमें 50% जो हैं वो इमिग्रेंट बैकग्राउंड से हैं, दूसरा 40% जो हैं वो फर्स्ट इन द फैमिली हैं। वो भी एक डिसएडवांटेज है बिकॉज लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए कैसे अप्रोच करना है, क्या जरूरत है, क्या और इसके फायदे क्या हैं। बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्म्ड सर्कल्स नहीं है हमारी, जो इमिग्रेंट फैमिलीज हैं उनको पता नहीं होता कि किसको अप्रोच करना है, कहाँ से हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कई लोगों के पास को ये वो समझते हैं कि यूनिवर्सिटी की डिग्री से का कोई फायदा नहीं है, कहीं भी जॉब कर लेंगे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे, तो इस तरह के, और ये नहीं पता कि अगर ये करना है तो उसके लिए हमें किस पाथवे से जा सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए ये जो प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स को और फैमिलीज को इंफॉर्मेशन भी देता है और सपोर्ट भी देता है।
हुकूमत ने अपने हालिया मिड ईयर बजट अपडेट में वेलफेयर और तालीम के शोबे में कुछ तब्दीलियां सजेस्ट की हैं, जिसका असर नए आने वाले तारकीन वतन पे पड़ेगा और तालिब इल्मों पे पड़ेगा। आपका वास्ता दोनों से पड़ता है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
तो काफी अरसे से ये डिबेट चल रही है एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। पहले इन्होंने जो बिल पेश किया था जो कि सेनेट में रिजेक्ट हो गया था, जो था कि फी बढ़ा देनी है PR होल्डर्स और न्यूजीलैंड सिटीजन्स के लिए, वो इंटरनेशनल फी देंगे। फिर शुक्र है कि वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो इतना एक अनफेयर किस्म का बिल था जिसमें एकदम से एक 20,000 तक, $20,000 तक पर ईयर, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकती थी जो PR होल्डर्स को देनी पड़ती, जो अभी देते हैं जैसे 5,000 तक, वो ही बहुत ज्यादा है। तो वो तो खैर शुक्र है रिजेक्ट हो गया। अब जो नया बिल आया है जिसमें इन्होंने 2.2 बिलियन कट करना है यूनिवर्सिटी फंडिंग से, अब अगर यूनिवर्सिटी फंडिंग से ये निकल गए पैसे जो कि नहीं मिलेंगे यूनिवर्सिटीज को, तो यूनिवर्सिटीज ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है? एक चीज तो यूनिवर्सिटीज ने ये करनी है कि उन्होंने प्लेसेस कैप कर देनी है। अब कैप का मतलब है कि लिमिटेड प्लेसेस होंगी, अगर लिमिटेड प्लेसेस होंगी तो इट विल बी कम्पेटिटिव। अभी एक एग्जाम्पल है कि UWA में आने के लिए 80 कट ऑफ है, 80 स्कोर ईयर 12 में, 8R होता है हमारे यहाँ पे, तो वो 80 बच्चा ले ले, बेशक वो 10 बच्चे ले लें, बेशक वो 100 बच्चे ले लें जिसका भी 80 होगा उसको वो मिल जाए, वो उसको यूडब्ल्यू में एडमिशन मिल जाएगा. लेकिन अब आइंदा ऐसा नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उनके पास पैसे कम है तो वो इतने ज्यादा बच्चों को डील नहीं कर सकते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है. और इसका इम्पैक्ट ये भी होगा कि जो ज्यादा एक्सपेंसिव डिग्रीज हैं जैसे कि इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, उसमें भी उनको फिर लिमिटेड बच्चे लेने पड़ेंगे जो कि अगेन कंपेटिटिव हो जाएगा. अब जो बच्चे प्रिविलेज स्कूल्स में जाते हैं और जिनको घर में प्रिविलेज है ट्यूटर्स का, वो तो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और शायद वो दे क्वालिफाई फॉर दिस एज वेल. लेकिन कई ऐसे बच्चे भी हैं जो इमिग्रेंट बैकग्राउंड से आए हैं, वो उनको मुश्किल है उनके लिए कम्पीट करना ऐसे बच्चों के साथ जिनके जो थर्ड फोर्थ जनरेशन ऑस्ट्रेलियंस हैं, जिनको इंफॉर्मेशन भी है, जिनको घर में सपोर्ट भी है, जिनके ऊपर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. हमारे कितने सारे बच्चे हैं जो मेरे पास भी आते हैं जिनका घर में फैमिलीज को यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या वॉट इट रिक्वायर्स टू डू वेल इन ईयर 12, और यूनिवर्सिटी की डिग्री कितनी डिमांडिंग होती है उनके ऊपर उन्होंने की. और कुछ हैं जिनपे घर की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं और अपने पेरेंट्स की वो हेल्प कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं बच्चे, और उनके लिए बहुत मुश्किल है उसी लेवल पे परफॉर्म करना जिस लेवल पे ऐसा बच्चा परफॉर्म कर रहा है जिसको इस तरह की कोई जिम्मेदारियां नहीं है. तो क्या होगा कि जो बच्चे, ये एक डिवाइड हो जाएगा कि इवन एक बच्चा जिसमें पोटेंशियल है, जो कर सकता है, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकेगा सिर्फ इस वजह से कि उसके घर में रिसोर्सेज कम थे या उसको इन्फॉर्मेशन कम थी या उसकी वो नए आए ऑस्ट्रेलिया में. दूसरा इसका इम्पैक्ट ये है कि ये इतनी एक्सपेंसिव डिग्री हो जाएगी, 100,000 तक अगर डिग्री महंगी चली जाएगी तो आप सोचेंगे आपने यूनिवर्सिटी खत्म की आपको, और इसका कैप इन्होंने कट वो लोअर कर दिया है. पहले ये 53,000 पे हेक्स का लोन कटना शुरू होता था, अब ये 45 पे शुरू हो जाएगा. 45,000 एनुअल इनकम होगी अगर आपकी, तो आपका ये लोन कटना शुरू हो जाएगा. तो 45 एनुअल इनकम तो कुछ भी नहीं है. कोई भी बच्चे आप जॉब शुरू करें, आपका पहले ही आपके सर पे है क्या इतना मेरे पास लोन है, और फिर लोन आपका कट रहा है. और दूसरी बात यह कि इट विल बी नॉट एन अट्रैक्टिव थिंग फॉर पेरेंट्स. वालदेन क्या सोचेंगे कि हमने बच्चे को यूनिवर्सिटी में डाला और वो तो उसके सर पे तो कर्जा पड़ गया और वो कर्जा लेके आ गया, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको बाद में जॉब मिलेगी कि नहीं. तो ये एक थोड़ा सा एक नेगेटिव सा वो लग जाएगा. हमारे पास पहले ही जॉब्स की अभी एक तो वैसे मुश्किल है, दूसरा ये कि जो बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको ज्यादा कम्पीट करना पड़ता है बजाय के वो जो नहीं आते, और ये एक फैक्ट है. और उनको हर लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दूसरों ज्यादा मेहनत करके दिखानी पड़ती है उनको बताने के लिए कि हम केपेबल हैं, हम कर सकते हैं. तो ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा. इट इज वेरी चैलेंजिंग एट मेनी लेवल्स. पेरेंट्स के लिए डिसाइड करना कि बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजना है कि नहीं भेजना, बच्चों के लिए डिसाइड करना बच्चों पे कितना बोझ है कि अब इट्स अ कम्पेटिटिव प्रोसेस, मैंने कम्पीट करना है पोजिशन, ये जगह लेने के लिए जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं या जो मिडिल टीयर हैं उनमें भी. और रीजनल और रिमोट स्टूडेंट्स पे ज्यादा असर होगा मेरे तो ख्याल में इस पे. और इतना ज्यादा डेट और उसके बाद सिर्फ 45,000 एनुअल इनकम पे वो कटना शुरू हो जाएगा. तो मतलब ये तो डिसएडवांटेजिंग द डिसएडवांटेज्ड वाली बात है. मैं बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ एजुकेशनल रिफॉर्म्स को क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे स्टूडेंट्स पे होता है और वो भी पूछते हैं. जैसे अभी डोमेस्टिक स्टूडेंट्स जो पीआर होल्डर्स हैं उनको पे करना पड़ता है अपना यूनिवर्सिटी फी, डोमेस्टिक फी देनी पड़ती है जैसे कि ऑलमोस्ट 5,000 तक, और न्यूजीलैंड सिटीजन्स को भी देनी पड़ती है. लेकिन हर कोई 5,000 पर सेमेस्टर देना अफोर्ड तो नहीं कर सकता. मेरे पास काफी हर साल होते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली आए, रिसेंट से मतलब के 3-4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए बच्चा है, जैसे कि ईयर 8 में ईयर 9 में ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो वो फिर यूनिवर्सिटी आए हैं. बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, आप सोचें कि पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम बहुत फर्क है. इवन अगर वहाँ का कोई प्राइवेट स्कूल में भी कोई बच्चा जा रहा है तो वहां से वो जब यहाँ आते हैं तो बहुत फर्क है इवन असाइनमेंट्स और किस तरह व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी डिफरेंट हियर. तो बच्चों के लिए डिमांड्स एकेडमिक डिमांड्स को समझना और फिर परफॉर्म करना आके एक ये तो एक चैलेंज है जो बच्चे हमारे बहुत से बच्चे बहुत अच्छा करते हैं. इंग्लिश समझनी एकेडमिक इंग्लिश एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल की है और यहाँ पे जैसा पढ़ाई जाती है टोटली डिफरेंट है जिससे कि हमने पाकिस्तान में पढ़ा. तो उसके बाद पेरेंट्स के को पास इन्फॉर्म नेटवर्क्स नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि ये हर एक ही कह रहा है कि ये बेहतर है ये बेहतर है जहां भी वो सुनते हैं. तो स्टूडेंट उनको ये समझना कि वाकई कौन सा कोर्स मेरे बच्चे के लिए बेहतर है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, उसका आउटकम क्या होगा, ये चीजें क्योंकि नए आते हैं इन्फॉर्म बाकी जो भी फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं वो भी सिमिलर सिचुएशन से गुजरे होते हैं या सिमिलर सिचुएशन में होते हैं, उनके पास भी लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है. तो ये नहीं कि कोई बुरी एडवाइस दे रहा होता है, ये होता है कि उनको खुद नहीं पता होता कि क्या सही है, तो वो भी उनके लिए भी कंफ्यूजिंग होता है. और मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं वो काफी इस बारे में परेशान होते हैं, उनके पेरेंट्स भी मेरे से अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि वाकई ये डिग्री अच्छी है, इस डिग्री से क्या मिलेगा. अब मैं आगे का तो कोई गारंटी नहीं कर सकती लेकिन जाहिर बात है कि यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ आपके पास एक करियर और ऑप्शंस आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी की ज्यादा होती हैं बजाय के यूनिवर्सिटी डिग्री के बगैर. लेकिन कितने पेरेंट्स हैं वो अपने सारे बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते. मेरे पास एक पाकिस्तानी फैमिली है थी, अब तो एक ने उनके ग्रेजुएट कर लिया लेकिन पेरेंट्स को ये डिसाइड करना था कि हमने दोनों बच्चों में से किसको भेजना है क्योंकि हम दोनों को यूनिवर्सिटी भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो पीआर पे थे. तो आप सोचेंगे पेरेंट्स के लिए भी कितना डिफिकल्ट है ये डिसाइड करना कि कौन जाएगा और फिर बच्चों को कैसा फील होगा कि एक को भेज दिया और मुझे नहीं भेजा. लेकिन इस तरह की जो डायलेमा है या इस तरह का जो मुश्किल डिसीजंस हैं वो काफी कॉमन है और पेरेंट्स कोशिश तो करते हैं यहाँ पे जितना भी वो कर सकते हैं लेकिन अगर उनके पास इंफॉर्मेशन ही है और काफी पाथवेज भी हैं टू यूनिवर्सिटी लेकिन अब आप देखेंगे अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है तो लोग सोचेंगे कि इज इट वर्थ इट, मैं कब $1,00,000 अगर मेरे पे लोन हो जाएगा तो मैं कब उसको उतार पाऊं, मेरा बच्चा उसको उतार पाएगा या किस तरह से उसको हम डील करेंगे. एक मीडियोकर इनकम में अगर आपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन खत्म की है फिर आपने अपना घर भी चलाना है, आपकी शादी हो गई है, आपकी यंग फैमिली है, आपकी वो डिमांड्स हैं, आपने हैक्स भी पे करना है, आपने और चीजें भी करनी है, क्या कुछ करेंगे. हुकूमत के पास अगर पैसे नहीं है और वो इन इधर से निकाल रहे हैं तो फिर ये कब तक निकालते रहेंगे एजुकेशन में से और फिर उसका असर क्या होगा.